वहां पहुंचते ही इप्सिता ध्रुव के पास गई और जल्दबाजी में बोली, हे ध्रुव, सब कुछ तैयार है ना? ध्रुव ने इप्सिता की बात सुनते ही पीछे मुड़ा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो। अच्छा हुआ नंदिनी तुम भी आ गई। प्लीज इशू को अच्छे से मेकअप कर दो। प्लीज ज्यादा समय मत लेना। ध्रुव ने इप्सिता और नंदिनी की ओर देखते हुए उन्हें कॉस्ट्यूम पकड़ाते हुए कहा, लो जल्दी जाओ, इसे पहन कर आओ। इप्सिता सीधे वॉशरूम गई और कपड़े बदलने लगी। जैसे ही वो बदल कर निकली, नंदिनी ने उसका तुरंत मेकअप करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह तैयार हो गई। पूरी तरह तैयार होने के बाद इप्सिता सीधे कैमरे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने लाइट पिंक रंग का लॉन्ग शॉर्ट टाइप गाउन पहना हुआ था जो स्लीवलेस था और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इप्सिता ध्रुव के अनुसार पोज देने के लिए सीधे कैमरे के केंद्र में आकर खड़ी हो गई और पोज देना शुरू कर दिया। ध्रुव इप्सिता के पोजिंग स्टाइल देखकर प्रभावित होते हुए बोला, वाह कमाल इशू, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो तुम कोई नई कलाकार नहीं बल्कि बहुत प्रोफेशनल मॉडल हो। इप्सिता ने उसकी बात सुनकर थोड़ा गर्व महसूस किया और मुस्कुराते हुए दूसरी ओर देखा। उसने अपने बालों को बड़े ही आत्मविश्वास से पीछे किया और ध्रुव ने उसका एक और पोज क्लिक कर लिया। जैसे जैसे वो फोटोज कैप्चर कर रहा था उसे बड़ी राहत महसूस हो रही थी क्योंकि उसकी हर एक तस्वीर बहुत विस्तार से थी। उसने इशू को दूसरी ड्रेस देते हुए कहा, चलो इशू जल्दी से इसे बदल कर आओ। इशू ने इस बार एक ब्लैक टॉप और नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी जो मल्टी कलर फ्लावर प्रिंट वाली थी और इप्सिता उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो अपने बालों में हाथ डालकर उन्हें पीछे करते हुए सीधे सामने आकर खड़ी हुई और इस बार ध्रुव ने उसे कुर्सी देते हुए कहा, इस कुर्सी के साथ पोज करना है, जैसे मन करे वैसे पोज करो। इप्सिता ने उस कुर्सी को ध्यान से देखा। वो उस कुर्सी पर बड़े ही स्टाइल से बैठी और पोज देना शुरू कर दिया। उसका एक एक पोज काफी अच्छा था जिसे देखकर ध्रुव काफी प्रभावित हुआ और उसने जल्दी जल्दी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया। फोटोशूट करते करते लगभग 2.5 घंटे हो गए थे। इप्सिता ने हर एक टेक में कई बार अलग अलग ड्रेस में फोटोशूट कराया। नंदिनी उसके साथ थी। ध्रुव और नंदिनी दोनों ही उसकी परफॉर्मेंस देखकर काफी खुश हो गए थे। ध्रुव ने जैसे ही अपना कैमरा बंद किया, इप्सिता जल्दी से कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में गई। वो जैसे ही बदलकर वापस आई, ध्रुव ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, यार तुमने तो कमाल कर दिया, सच में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम्हारे सारे फोटोज इतनी अच्छी तरह से क्लिक हो जाएंगे। यार इप्सिता, अगर तुम इसी तरह से 2-2 घंटे समय निकालकर भी मेरे साथ फोटोशूट कर लोगी तो पता है तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, हमारा दोनों का ही करियर बन जाएगा। इप्सिता ध्रुव की बात सुनकर निराश होते हुए बोली, मुझे माफ करना ध्रुव, लेकिन ये हमारा आखिरी फोटोशूट था। अब हम और कोई फोटोशूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जाम देने के बाद जैसे ही हम घर पहुंचेंगे उसके बाद ही हमारी शादी हो जाएगी और फिर हमारा एक भी फोटोशूट करवाना संभव नहीं होगा। तुम प्लीज अब हमसे कोई उम्मीद मत रखना और जितनी जल्दी हो सके हमारा रिप्लेसमेंट ढूंढ लो क्योंकि ये आखिरी बार था जब हमने तुम्हारी मदद की है। हम अब इसके बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज समझो ध्रुव। उसकी बात सुनकर थोड़ा उदास होते हुए ध्रुव बोला, यार इप्सिता कैसी बात कर रही हो, तुम खुद भी जानती हो कि तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढ पाना कितना मुश्किल है। तुम बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट मॉडल हो और मुझे नहीं लगता तुम्हारी जैसी कोई और लड़की मुझे मिल पाएगी जो इतनी परफेक्ट हो। प्लीज यार इशू, एक बार शादी करने के बाद अपने ससुराल वालों से बात तो करके देखना, हो सकता है वे तुम्हारे लिए मान जाए। और वैसे भी ये तो तुम्हारा सपना था ना, तुम अपने सपने को इतनी आसानी से छोड़ दोगी क्या? इप्सिता ध्रुव की बात सुनकर उसे घूरने लगी और चिढ़ते हुए बोली, सच में ध्रुव तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे लिए अपना सपना छोड़ना इतना आसान है? तुम्हें नहीं पता हमने किस तरह खुद को मनाया है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा राज परिवार और हमारे परिवार की इज्जत, सब कुछ हमारे हाथ में है और हम उसे अपने सपने के लिए बर्बाद नहीं कर सकते, समझो तुम। इतना बोलकर इप्सिता अपना सिर पकड़कर उसी कुर्सी पर बैठ गई। नंदिनी उसे इतना चिढ़ा हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शांत रहो इशू, ध्रुव तुम नहीं जानते एक शाही परिवार में होना कितनी बड़ी बात होती है। पहले मैं भी यही समझती थी कि इशू की जिंदगी तो बहुत अच्छी है, वो एक शाही परिवार से है, सब कुछ उसे बिना मांगे मिल जाता है। मैंने सिर्फ उसके शाही परिवार का अच्छा पहलू ही देखा था, लेकिन जब मैं इशू की सगाई में उसके घर गई तब मुझे शाही परिवार के बुरे पहलू के बारे में पता चला। तब मुझे एहसास हुआ कि इशू क्यों हमेशा से एक साधारण लड़की की तरह जिंदगी जीना चाहती थी, क्योंकि एक शाही परिवार में होना इतनी पाबंदियां होती हैं, इतने नियम और कानून होते हैं। इसके अलावा तुम्हें हर वक्त अपने परिवार की इज्जत के बारे में याद दिलाया जाता है, हर चीज पर तुम्हें रोक टोक लगाई जाती है, यहाँ तक कि अकेले कहीं बाहर जाने के लिए भी कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तुम नहीं जानते जब मैं वहाँ थी तब इशू को हर चीज के लिए अनुमति मांगनी पड़ती थी। तब मुझे समझ में आया कि शाही परिवार में होने के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। ध्रुव नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता के पास आकर बोला, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये तुम्हारा सपना था इसीलिए मैं तुम पर इतना जोर डाल रहा था, मुझे बहुत माफ करना। इप्सिता उठकर खड़ी हुई और उदास होते हुए बोली, छोड़ो ध्रुव, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और तुमने हमारे लिए इतना सोचा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन शायद हमारी किस्मत में मॉडलिंग का करियर ही नहीं था, शायद हमें राजवंशी राज परिवार की बहू ही बनना है और यही हमारा भविष्य है। और सच बताऊं तो अब हमने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। इतना बोलकर उसकी आंखों से आंसू छलक गए और उसे इस तरह निराश होते देखकर नंदिनी ने उसे गले लगा लिया। वो भी थोड़ी दुखी हो गई थी। वहीं ध्रुव ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें और उदास नहीं करना चाहता। ये फोटोशूट हो गया है और अब मैं इन फोटोज को कल ही जमा कर दूंगा। तुम जाने वाली थी ना इशू, तो जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। जैसे ही ध्रुव ने ये बात कही, इप्सिता और नंदिनी ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, हाँ हमें जाना होगा। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने बैग उठाए और सीधे वहां से निकलकर हॉस्टल की ओर चल दी, क्योंकि अभिमन्यु ने हॉस्टल के पास ही गाड़ी भेजी थी। जैसे ही इप्सिता और नंदिनी हॉस्टल पहुंची, उन्होंने देखा कि अभिमन्यु की कार पहले से ही वहां मौजूद थी। नंदिनी इप्सिता के साथ कार तक आई और देखा कि कार में अभिमन्यु बैठा था। उसे देखकर इप्सिता और नंदिनी कार के बाहर ही रुक गई। इप्सिता ने नंदिनी को गले लगाते हुए कहा, तुम अब जाओ, हम चलेंगे। नंदिनी ने कार की खिड़की से अंदर झांकते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद जीजू, यीशु को मेरे साथ समय बिताने के लिए आपने इतना समय दिया। अभिमन्यु नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और जैसे ही इप्सिता कार में बैठी, नंदिनी वहां से सीधे हॉस्टल की ओर चली गई। इप्सिता बहुत शांत थी। जैसे ही वो कार में बैठी, ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। इप्सिता के मन में अभी भी ध्रुव की ही बातें चल रही थी। उसने जिस तरह उसे मना किया था कि वो अब दोबारा कभी भी कोई फोटोशूट नहीं कर पाएगी, ये उसका आखिरी फोटोशूट था। यही सोचकर इप्सिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने अपनी आत्मा और अपने सपने का खुद ही गला घोंट दिया है। इप्सिता को इस तरह शांत बैठा देखकर अभिमन्यु ने उससे पूछा, क्या बात है इप्सिता, आप ठीक तो है ना? इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनते ही उसकी ओर देखकर बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, जी हम ठीक हैं। अभिमन्यु इप्सिता के चेहरे के भाव देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने बात घुमाते हुए पूछा, वैसे आप नंदिनी के साथ कहीं बाहर गई थी क्या?
इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। वो और कुछ नहीं बोली। अभिमन्यु ने जब देखा कि इप्सिता उसकी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रही है, तो उसने फिर दोबारा कुछ नहीं पूछा। और जैसे ही वे लोग विला पहुंचे, इप्सिता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने कपड़े बदलने के बाद उसी बिस्तर पर बैठते हुए कहा, हमारा सपना, जिसके लिए हम इतना सब कुछ सोच रहे थे, क्या क्या नहीं सोचा था हमने, आज वो सब खत्म हो गया। इप्सिता इतना बोलकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसका सपना टूटकर बिखर चुका था। इप्सिता ने तकिए को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। इप्सिता को रोना आ रहा था, लेकिन वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोते रोते उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। इप्सिता एक बार के लिए उठी, वॉशरूम गई और रोते हुए चेहरे की ओर देखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अब रोने का क्या फ़ायदा इप्सिता, जब अपनी ये ज़िंदगी खुद चुनी है तो फिर रोकर क्या साबित करना चाहती हो? भूल जाओ ये सब कुछ। अब एग्ज़ाम के बाद जब तुम घर जाओगी, तो तुम सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु की पत्नी और राजवंशी राज परिवार की बहू कहलाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इप्सिता शीशे में देखते हुए खुद से ही ये सारी बातें बोल रही थी, या फिर ऐसा कह सकती हैं कि वो खुद को बार बार ये बात याद दिलाना चाह रही थी कि अब उसका भविष्य मॉडलिंग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इप्सिता का मन नहीं मान रहा था। इप्सिता ने अपने दिमाग को तो समझ लिया था, लेकिन वो अपने दिल को नहीं समझ पा रही थी। इप्सिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसका जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि इस बात के लिए रोकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रोने के बाद भी उसे किसी का सहारा नहीं मिलने वाला, खासकर मॉडलिंग प्रोफेशन में। और उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि कॉलेज के पहले ही साल फ्रेशर पार्टी में मॉडलिंग कॉम्पिटिशन जीतने के बाद पता नहीं क्यों उसने दोस्तों की बातों में आकर मॉडलिंग करनी शुरू की, जो कि पहले तो कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन तक ही थी, लेकिन उसके बाद ध्रुव का साथ मिलने पर वो कुछ मैगजीन और लोकल एल्बम कैलेंडर के लिए भी फोटोशूट करने लगी थी। उसे खुद सामने से ऑफर आते थे और उसकी वजह से ध्रुव को भी काम मिलता था, तो वो मना नहीं कर पाई। और फिर धीरे धीरे उसे खुद भी मॉडलिंग करना अच्छा लगने लगा और उसे समझ आया कि शायद वो यही करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये सब कुछ एकदम बदल गया था, खासकर जब वो छुट्टियों पर अपने घर गई और उसे शादी की खबर मिली। ये सब कुछ सोचते हुए इप्सिता अपने बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आँखें बंद कर लीं। क्रमशः